السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمده وعدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد کلماته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آج کے درس قرآن کا عنوان ہے وبالوالدین احسانا. انسانوں پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اور اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی بندگی کرنا، یہ ہم سب کا اولین فریضہ ہے. اس کے بعد گھریلو ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں، اور گھریلو ذمہ داریوں میں سب سے بڑا حق، سب سے بڑا بلند مقام والدین کا ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، خدمت کرنا، اس سلسلے میں ہمیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر 12 ایسی آیات ملتی ہیں جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی، ان کی عزت اور تعظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. آج کے درس قرآن کے لیے خاص طور پر سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم سوالے بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات جس کی طرف متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے. اس دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، اور یہاں پر رب کا لفظ ہے. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، ذرے کو عروج دینے والا. ایک حقیر سے نطفہ جو انسان کا تھا، اس کو پھر ایک جیتا جاگتا قوی انسان بنانے والا. اور رب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جو کھانے پینے کی یا جسمانی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے دین دیا ہے جو کہ دین اسلام ہے، اور ایسا خوبصورت دین دیا ہے جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے متعلق احکامات اور ہدایات دی ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ معاشرتی زندگی میں انسان کو کیسے رہنا چاہیے. اور سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیات، آپ اس کو مزید اگر آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں، یہ آیت نمبر 23 سے آگے تک کی جو آیات ہیں، اس میں دین اسلام کے بڑے بڑے اصول بتائے گئے ہیں، اور ان میں سے دو بڑے اصول آج ہم اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک توحید اور دوسرا وبالوالدین احسانا. توحید کے معنی ہیں सिर्फ अल्लाह की पूजा और परस्तिश न की जाए, सिर्फ नमाज ही न पढ़ी जाए और दीन को नमाज, रोजे और हज तक महदूद न समझा जाए, बल्कि इसके साथ साथ पूरी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी गुजारने के लिए जो हदायात, जो अहकामात और जो कवानीन दिए हैं उनको अपनी जिंदगी में जारी और सारी किया जाए। तो अब यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ये आयात हमें ये बताती हैं कि इस्लाम पूरी इंसानी जिंदगी में इस्लामी निजाम की इमारत की तामीर चाहता है और उस इमारत की एक बड़ी बुनियाद ये है कि मुआशरती जिंदगी भी अल्लाह के उसूलों के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारी जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें नमाजें पढ़ने के साथ साथ इंसानों में सबसे ज्यादा जिसका तुम पर हक बनता है, जिसका तुम पर फर्ज बनता है और जिसकी तुम्हें खिदमत, ताजीम और अदब करना चाहिए, वो तुम्हारे वालदैन हैं। क्योंकि अगर हम गौर करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द इंसानी ताल्लुकात के बहुत से दायरे हैं और बहुत से नुक्ते मिलते हैं तो इंसानी दायरे तरक्की पाते चले जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम वालदैन हैं। उसकी क्या वजह है? अल्लाह के बाद वालदैन ही वो जरिया है कि इंसान इस दुनिया में आता है और उसके साथ साथ इंसान की तरबियत में, परदाख्त में, उसकी जो जरूरियात हैं उसको पूरा करने में वालदैन एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और आप गौर करें तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि एक अल्लाह की इबादत तुम करो और उसके साथ साथ वालदैन के साथ नेक सुलूक करो। उससे क्या मुराद है कि अल्लाह का कहना मानना है और अल्लाह के कहने के अंदर जितने भी और बातें आती हैं उसमें अहम तर ये है कि वालदैन के साथ जो मामला रखा जाए उसमें हुस्ने सुलूक किया जाए, एहसान के दर्जे की नेकी। एहसान का लफ्ज जो है ये हुसन से निकला है और हुसन के मानी होते हैं ड्यूटीफाई करना, किसी चीज को बहुत अच्छे से करना। और वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक में उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी इज्जत, उनकी ताजीम, उनकी अतात, उनका कहना मानना, उनके आगे झुके रहना, उनकी जरूरियात को पूरा करना, जिस्मानी भी और जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं, जो जायज हैं अल्लाह के हद के अंदर, वो सारी की सारी एहसान के दर्जे की नेकियों में आती हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहे तो उन्हें उफ तक ना कहो। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत वालदैन से जो हुस्ने सुलूक का हुक्म देते हैं उसमें जो अहम बात है वो ये है कि दोनों या दोनों में से एक अगर बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। इससे मुराद ये नहीं है कि जब जवान हो तो उनकी खिदमत नहीं करनी, उनका कहना नहीं मानना। जवान हो तब भी उनकी खिदमत करनी है। यहाँ पे बुढ़ापे का जिक्र खास तौर पर इसलिए आया है कि बुढ़ापा बजाते खुद एक बीमारी है। बुढ़ापे में इंसान का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और बुढ़ापे में इंसान दूसरों की जरूरियात का मोहताज हो जाता है। तो जवानी के साथ साथ बुढ़ापे में खास तौर पर वालदैन की इज्जत करना, उनका एहतराम करना, उनकी जरूरियात को पूरा करना क्योंकि जरूरी है तो इसका जिक्र खास तौर पर किया। इससे मुराद ये है कि हर दौर में, जवानी हो या बुढ़ापा, हालात अच्छे हों या के कमजोर, जैसे भी हालात हों, हर दौर में वालदैन की खिदमत और इज्जत करनी चाहिए। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों का इंसानी मुआशरा जो है उसमें वालदैन का क्या मकाम है, उनके क्या हुकूक हैं, उनके क्या फराइज हैं जो कि वालदैन के लिए औलाद पर आयद होते हैं। और फिर फरमाया कि दोनों या दोनों में से एक, किसी एक को भी पाओ तो उन्हें उफ तक ना कहो। और उफ से मुराद क्या है? उफ जो है वो दिल की बेजारी और दिल की नागवारी को कहते हैं कि दिल के अंदर इंसान के कोई बुरा ख्याल हो। जैसे मुफस्सरीन ने उफ के कई मानी बताए। किसी ने कहा कि उफ दरअसल दिल की बेजारी का इजहार है। फिर फरमाया कि उफ से मुराद है किल्लत यानी कमी करना, ऐसी अदना बात भी कहना जो नफरत या कराहत का इजहार करती हो। उफ एक ऐसा कलमा है जिससे नागवारी का इजहार हो, यहां तक कि नागवारी के इजहार के लिए अगर लंबा सांस भी लिया जाए तो वो भी उफ में शामिल है। मसलन अम्मी और अबू वालदेन ये कहते हैं कि उठो और पानी का गिलास ला दो, तो आपके उफ, तो ये भी उफ में शामिल है। या उठो बेटा लाइट ऑन कर दो, उफ। या बाजुकात बच्चे ये कहते हैं ना कि ये क्या मुसीबत है, और अम्मी तो पुकारती रहती हैं, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। और बाजुकात बच्चे ये भी कहते हैं कि अम्मी की जबान पर बस मेरा ही नाम चढ़ गया है। और कुछ याद ही नहीं रहता, या मरियम कहती हैं या फिर सना कहती हैं या आमना, बस आमना का नाम पक गया है अम्मी के मुंह पर। तो बेजारी में दिल के अंदर ख्याल आता है, अभी मुंह से ज्यादा नहीं कहा, बस उफ ये चीज भी, यानी लंबा सांस लेना भी इसमें शामिल है। और मुराद क्या है कि अपने किसी भी कॉल से, किसी भी अमल से अपने चेहरे पे झुंझलाहट लाना, बाजों का मुंह उतर जाता है या बिगाड़ देते हैं और उससे बेजारी का इजहार किया जाता है, तो ये भी इसमें शामिल है। आप ये सोच रही होंगी और आप ये महसूस कर रही होंगी कि ये मैं नहीं कह रही, ये मेरा और आपका वो रब कह रहा है जो 70 माओं से पढ़कर मोहब्बत करता है। वो ये फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ, फिर इन दोनों को उफ न कहना, ना माँ को ना बाप को, बूढ़े हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, नादार हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहरहाल वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हारी जन्नत हैं, इन्हें उफ न कहना। तो उफ दिल की बेजारी का नाम है। फिर फरमाया, वला तनहर हुमा, और उन दोनों को ना डांटना। तनहर से मुराद है डांटना, झिड़कना। बाज औकात ऐसा होता है कि वालदैन का एक मुतालबा होता है, उनकी एक ख्वाहिश होती है, और बच्चे क्या करते हैं कि वालदैन की बात को पूरा करने की बजाय, वालदैन की बात को सुनने की बजाय, वालदैन को डांट कर जवाब देते हैं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और उनको बाज़ औक़ात लान तान करते हैं, गालियां देते हैं, या और भी, जैसे अभी पिछले दिनों एक स्कॉलर स्पीच दे रहे थे और कह रहे थे कि मुझे रात के वक्त फोन आया कि शहाब कम टू माई हाउस, माई सन इज बीटिंग मी, यानी 17-18 साल का मेरा बेटा है और मुझे मार रहा है ना, तो मेरे घर में आओ और इसको समझाओ। तो ये सब चीजें इसमें शामिल हैं कि वालदेन को मारने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन आजकल की इस दुनिया में जो हालात पेश आ रहे हैं उसमें बड़े अजीबोगरीब हालात हैं, जिसमें आज हर शख्स परेशान भी है, मुतफक्किर भी हैरान भी है और सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले एहसान के दर्जे की नेकी करने को कहा, और फिर ये भी कहा कि तुम उनके साथ हुस्ने सलूक करो, और फिर ये भी कहा कि दोनों हो या एक, फिर ये भी कहा कि उफ भी नहीं करना और उसके साथ उनको डांटना डपटना भी नहीं है, बल्कि क्या फरमाया, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ अच्छी तरह बात करते रहा करो, बल्कि उनके साथ एहतराम के साथ बात किया करो। और एहतराम के साथ बात करना, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसमें उनकी बात को तवज्जो से सुनना, उनको प्यार से देखना, उनकी इज्जत अफजाई करना, उनकी ताजीम करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना। और इस सिलसिले में हमें बहुत सी ऐसी अहदीस मिलती हैं जिसमें वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक के बारे में पता चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते थे, ऐसी अहदीस मिलती हैं और पता चलता है कि सहाबा में नेक कामों की बड़ी हिर्स थी, उन्हें ये फिक्र रहती थी कि सबसे अफजल अमल कौन सा अमल है, उनके दिलो दिमाग में हर वक्त फिक्र आखरत तारी रहती थी, अल्लाह का कुर्ब और उसकी रजा और जन्नत का शौक, ये हर वक्त उनके दिलों में जागजी रहता था, और उनको ये फिक्र रहती थी कि जन्नत कैसे मिल सकती है, हमारा रब कैसे राजी हो सकता है। और इसका पता कैसे चलता है कि अक्सर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये पूछा करते थे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताएं जो हमें जहन्नुम से दूर कर दे और जन्नत के करीब कर दे। कभी पूछते, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कि अल्लाह के नजदीक अफजल तरीन अमल कौन सा है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ऐसे सवाल पूछते, और जिनका मकसद होता था कि जन्नत मिल जाए और रब की रजा मिल जाए। तो ऐसे औकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो बातें कही वो अहदीस की रोशनी में मेरे और आपके सामने आती हैं। इसी सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ने लगे, जब मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन। जब आप मिंबर से नीचे उतरे तो सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आमीन क्यों कहा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और ये कहा कि अगर कोई शख्स वालदैन में से किसी एक या दोनों को बुढ़ापे में पाए اور اس سے ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا. تو میں نے کہا آمین. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تین باتیں تھیں, ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس پر اگر کوئی درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اور تیسری بات یہ تھی کہ رمضان کو پائے اور اس کے روزے رکھ کر جنت کا مستحق نہ بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اب سوچئے کہ بدعا وہ جبرائیل دے رہے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا اور آمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, تو کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے, ہاتھ کھڑا کریں کہ کتنے لوگوں کو جنت چاہیے. ہاں زور سے بولیں, آپ سب کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے, سب کو رب کی رضا چاہیے. تو آپ سوچیں کہ جنت اس دنیا میں سب سے قیمتی اور سب سے بہترین تحفہ ہے جو کسی شخص کو مل جائے اور اس کی وہ اس کی دنیا میں تیاری کر لے. لیکن وہ جنت اتنی آسان نہیں ہے, وہ جنت اتنی سستی نہیں ہے, اور اس کے لیے تو عمل کرنا پڑے گا, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے وہ چیزیں جن سے دل میں بیزاری بھی پیدا ہوتی ہے یا مشکل لگتے ہیں جو کام, وہ بھی ہمیں کرنے پڑیں گے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبائر میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے. پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں جب کسی دوسرے شخص کے والدین کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دے, تو یہ بھی گالی دینا ہے. کہ آپ کسی کے والدین کو برا بھلا کہیں تو وہ آپ کے والدین کو برا بھلا کہنے لگے. تو دوسروں کی عزت کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین کو کوئی کچھ نہ کہے. کجا یہ کہ اولاد خود اپنے والدین کو گالیاں دے کہ کب موت آئے گی, جان کب چھوٹے گی, ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں, یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیا بات ہے, اور بھی اس طرح کی مختلف باتیں. تو سوچنا چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسی طرح ہمیں ایک حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ والدین کا دل دکھانا گناہ کبیرہ ہے, کہ دل دکھانا. ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا, ماں باپ ہی تمہاری جنت اور دوزخ ہیں. یعنی ان کی خدمت کر کے, ان کو خوش کر کے یا تو تم جنت کما سکتے ہو, یا پھر یہ ہے اگر تم نے ان کی خدمت نہ کی اور ان کو دکھ دیا, ان کے ذریعے دوزخ, ان کو ستانا, ان کو تنگ کرنا. پھر اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ سب گناہوں کی سزا اللہ چاہتا ہے تو قیامت تک اس کو دیر کر دیتا ہے, مؤخر کر دیتا ہے, مگر والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دے دی جاتی ہے. آپ سوچیں یہ کتنی سخت حدیث ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا, ان کو ستانے کی سزا انسان کو دنیا ہی میں دی ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے, ان کی باتوں کو توجہ سے سننا چاہیے اور ان کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے. ایک بڑا عجیب واقعہ ہے, یہ امام قرطبی نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت تھی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے والد کو بلا کر لاؤ. اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کیا کلمات ہیں جو اس نے دل میں کہے, خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا. جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا, کیا بات ہے, آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھپھی خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی, اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اس کے والد سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا. اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں, جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی, جو ایک معجزہ ہے. پھر اس نے عرض کیا, یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا. آپ نے فرمایا, وہ ہمیں سناؤ. تو اس وقت اس نے یہ اشعار سنائے. یہ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے, میں آپ کو ترجمہ اشعار کا سناتی ہوں. ان کا ترجمہ اس طرح سے تھا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی, تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا, جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا، میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، یعنی کہیں تمہیں موت نہ آ جائے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، انت و مالک لے ابی، جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ اور یہ مشہور اشعار عربی کی مشہور کتاب ہے حماسہ، شاعری کا مجموعہ ہے، اس کے اندر بھی یہ نقل کیے گئے ہیں۔ تو ان اشعار میں باپ کیا کہتا ہے، کیونکہ جب ماں باپ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اولاد جب ماں باپ کے پاس آتی ہے کیسی ہوتی ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے لوتھڑا سا، ماں باپ کو جب ملتا ہے بچہ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رات رات بھر جاگتے ہیں، وہ دن دن بھر پریشان رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ماں اور باپ دونوں مل کر بچے کی تربیت پرورش کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ انسان کے بچے کو پالنا بہت مشکل ہے، جانوروں کے بچے کھیل کود کر خود ہی پل بڑھ کر جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اور جوں جوں بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی پرورش، اس کی تربیت اور مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے چھوٹے بچے والی مائیں سمجھتی ہیں ہم بڑی مشکل میں ہیں، عورت یہ سمجھتی ہے جب پیٹ میں ہے تو شاید زیادہ مشکل میں ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو سہولت ہوگی، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اور روتا ہے، اس کے بعد جوں جوں بڑا ہوتا ہے ماں کہتی ہے چلو جی پیمپر چھوٹے گا، فیڈر چھوٹے گا، تو چلو سہولت ہو جائے گی، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا، جب وہ روٹی کھاتا ہے تو پھر وہ کہتی ہے اچھا چلو اور سہولت ہوگی، اب بڑا ہو رہا ہے، جوں جوں بڑا ہوتا ہے پھر کہتی ہے اچھا چلو ان کی شادی کر دیں اور سہولت ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں نا کہ جب شادی نہیں ہوتی تو وہ روٹیاں کھاتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے بوٹیاں توڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ جوں جوں بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مشکلات، پریشانیاں، تفکرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور والدین کا مسلسل ایک کردار ہے جو وہ ادا کرتے ہیں۔ دعائیں ہیں، ان کو نیند نہیں آتی راتوں کو، وہ اٹھتے ہیں اور روتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی بہترین فیوچر کے لیے اور ان کی نیکیوں کے لیے، تاکہ وہ اچھے کام کریں۔ لیکن اولاد کا رویہ کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس اگر کوئی پیسے ہیں، کمائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، اور ماں باپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہماری اولاد کے لیے ہے۔ دنیا میں سب لوگ محبت کرتے ہیں، پر کسی کی محبت بے غرض نہیں ہے سوائے ماں باپ کے، ہر ایک کی محبت کی کوئی غرض ہے، میاں بیوی کیوں نہ ہوں، دوست کیوں نہ ہوں، بہن بھائی کیوں نہ ہوں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی بات آ جاتی ہے۔ لیکن والدین ایسا خوبصورت تحفہ ہیں، ایسی خوبصورت نعمت ہیں، ایسی پیاری رحمت ہیں، ایسی پیاری برکت ہیں، ہر حال میں اولاد کے لیے خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھتے چلے جائیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اچھا، ہم میں سے بعض لوگوں کو والنٹیئر کام کرنا، دوسروں کے کام آنا، اس کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ کام رضا کرانا کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر وقت کی ایک نیکی ہوتی ہے اور ہر ایک کے لیے افضل ایک نیکی ہوتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا اور یہ فرمایا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ، بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔ صحیح مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے ملاقات کا شوق کس کو نہ ہوگا، اب بھی مدینہ اور مکہ میں جانے کی تمنا دل میں مچلتی رہتی ہے، جو ایک دفعہ جاتا ہے کہتا ہے بار بار جاؤں، اور اللہ کے نبی موجود ہیں، اور وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ملنا تو چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی خدمت میں آؤں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ والدہ کو چھوڑ کر میری خدمت میں چلے آؤ۔ اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ کی صحبت پائی تو اس کو صحابی کا درجہ ملا، और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने जमाना पाया, उनके जमाने में मौजूद थे लेकिन सहाबी के शरफ से महरूम हो गए। क्यों? ये वालदा की खिदमत थी, ये वालदा का एहतराम था, वालदा को उनकी जरूरत थी कि जिसकी वजह से वो अपनी बीमार वालदा को घर में छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हो सके। इधर से वालदा का इंतकाल हुआ तो उधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्हों से कहा कि ए उमर, अगर हो सके तो अवैस करनी से दुआए मगफरत ले लेना। वो ऐसा शख्स है कि अल्लाह के नाम की जब कसम खाता है तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देता है। हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को खैरुत ताबईन का आपने टाइटल दिया, उनको ये दर्जा ये फजीलत कैसे मिली? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत और फिर अपनी वालदा की खिदमत की वजह से। उन्होंने अल्लाह के रसूल का कहना माना कि मेरी माँ को जरूरत है, तो उन्होंने अपने घर को ना छोड़ा, हालांकि उनका दिल चाहता था। अगर मैं और आप उनकी जगह होते तो हम कहते कि ठीक है माँ बीमार है, लेकिन हम तो अल्लाह के नबी की खिदमत में जा रहे हैं, हम तो दीवानावार चले जाते। आप सोचिए कि बात ये नहीं कि दिल क्या चाहता है। बाज़ औक़ात हम मस्जिद में जाते हैं वॉलंटियर काम करने, बाज़ औक़ात दोस्तों की खिदमत करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन घर में वालदैन मौजूद होते हैं जो बूढ़े होते हैं, या वो कमजोर होते हैं, या बीमार होते हैं, या वैसे ही उनको जरूरत होती है, और हम नहीं सोचते कि हम अपने वालदैन की खिदमत करें। और आप सोचें कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो, जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुम उमर की बात करते हो, उमर तो जिस रास्ते से गुजरता है शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है। और आपने फरमाया था अगर मेरे बाद कोई पैगंबर आता तो उमर फारूक होते रजी अल्लाह अन्हो। लेकिन आपने उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो को मुखातिब करके फरमाया, ए उमर, अगर हो सके तो अवैस करनी से दुआए मगफरत करवा लेना। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो इतने नेक, इतने मुत्तकी, अशरा मुबशरा में से, आप सारी जिंदगी रसूल अल्लाह के बाद इस बात का एहतमाम करते रहे। जब कोई काफिला आता, पता करते यमन से कोई काफिला आया है, इसके बाद पूछते कि वहां उसमें कोई अवैस करनी नाम का आदमी है? क्योंकि दुआए मगफरत की आपको ना एक तड़प थी, एक लगन थी, एक जज्बा था। फिर जब आपको पता चला कि ये हैं अवैस करनी, फिर उनसे जाके मिले और फिर उनको दुआ के लिए कहा, तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला? तो बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपके बारे में ये कहा था। तो अवैस करनी रजी अल्लाह नो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए अपने बारे में जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलमात सुने। आप देख लें कि अब जन्नत घर में है, और बाजू का तो उनको हमारी अच्छा जरूरत होती है, लेकिन औलाद अपने कामों में मसरूफ होती है। मैं ये नहीं कहती कि वो अपनी तालीम या अपनी जॉब या जरूरी काम ना करें, लेकिन उनको जरूर इस बात पर सोचना चाहिए कि काम जरूरी है या गैर जरूरी। बाजू का फोन पर घंटों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात लैपटॉप पर कंप्यूटर पर बैठकर चैटिंग कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात मूवियां देख रहे होते हैं। और माँ कोल्हू के बैल की तरह, जैसे बैल है ना जो चलता है, फजर से लेकर रात तक मेहनत करती है। और बच्चे इतना भी नहीं पूछते कि माँ मैं तुझे दबा दूँ, मैं तेरे कंधों को दबा दूँ, माँ मैं तुझे पानी का गिलास ला के दूँ, या बाबा से पूछें कि बाबा आपकी चाय का वक्त है, मैं आपको चाय कप ला दूँ। हम कहते हैं बाबा को देखना, अब्बू को देखना, ये तो माँ की जॉब है, वो उसका काम है कि अब्बू को माँ देखे। हमारा ये काम नहीं है कि हम वालिद की खिदमत करें या उसका एहतराम करें। क्या ईमान इसको कहते हैं? क्या जन्नत का शौक इसको कहते हैं? क्या अल्लाह से मोहब्बत इसको कहते हैं? क्या मगफरत की तलब और शौक इसको कहते हैं? हमें सोचना चाहिए, हमें अपने अमलों का जायजा लेना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी क्या बनती है कि क्या क्या अहदीस हैं और क्या क्या पैगामात हैं कि एक दफा एक आदमी आपके पास अपने बाप की जब शिकायत लेकर पहुंचा कि वो मेरा माल लेते हैं, और अभी भी आपने वो वाकया जो है वो सुना है, तो उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो कहा था कि जा, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं, है ना? तो औलाद ये बाप की कमाई है। और हमें एक हदीस से ये भी पता चलता है कि रब की रजा बाप की रजा में है। खिदमत का दर्जा माँ का ज्यादा है, माँ नरम है, नाजुक मिजाज है, और माँ बच्चे की पैदाइश में और उसके पालने पोसने में ज्यादा मेहनत मशक्कत करती है, तो खिदमत का दर्जा उसका ज्यादा है। लेकिन बाप की इज्जत करना, उसकी ताजीम करना, उसकी खिदमत करना, उसका ख्याल करना, अब सोचे तो सही कि रब की रजा बाप की रजा में है, वालिद का कितना मकाम है। और एक सच्चा वाक्या है, मजदूर वालदैन थे, बच्चे को पढ़ने भेजा तो हॉस्टल में दाखिल करवा दिया, और जब हॉस्टल में बाप मिलने के लिए गया तो गुर्बत थी और अच्छे कपड़े भी नहीं इतने थे, तो वहां पता नहीं बच्चे ने झूठ सच क्या बोला हुआ था। जब बाप मिलने के लिए आया तो बच्चे ने कहा कि ये हमारा नौकर है, यानी ये पसंद ना किया कि बताए कि ये मेरा वालिद है ना, तो कहा कि ये नौकर है जो कि हमारे पास आया है मिलने के लिए ना। तो बाप ने एक जुमला सुन लिया बेटे का, उसने नहीं जूती उतार ली और बेटे को मारना शुरू किया कि आ मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं, मैं बाप हूं कि तुम्हारा नौकर हूं ना। तो आप देखें कि यहाँ पे भी बच्चे बाजू का शर्माते हैं कि हमारी माँ ने स्कार्फ पहना हुआ है या जिलबाब पहना हुआ है। पब्लिक स्कूलों में जब जाते हैं ना वो शर्माते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि पता चले कि हमारी माँ जिलबाब पहनती है या स्कार्फ पहनती है, या इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या ये कि ये डिफरेंट कल्चर के हैं तो लोगों को हम क्या बताएंगे, है ना। बाज औकात बाज बच्चे जब डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सोसाइटी में उनको एक अच्छा मकाम मिल जाता है, तो वो अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूस करवाना, दोस्तों से मिलवाना पसंद नहीं करते। और अब यहाँ मगरिब का तोहफा क्या है, एक तो ये कि माइंड यूर ओन बिजनेस और आई डोंट केयर, मुझे खुद अपने आप में रहना है, हर शख्स अपनी दुनिया में रहता है। और अब बच्चे भी अपना कमरा बंद करके अपने कमरे में बैठ जाते हैं, दरवाजा बंद करके, माँ बाप क्या कर रहे हैं, कोई मेहमान आया तो कहते हैं और डैडी के दोस्त आए होंगे, मामा की फ्रेंड आई होंगी, और इतनी भी तौफीक नहीं होती, वो इतना भी नहीं सोचते कि बाहर निकल कर ये पूछ ले कि मामा चाय मैं बना दूं, या ये कि उनको सलाम कर लें, या 2 घड़ियां माँ बाप के दोस्तों के पास या वालदा की फ्रेंड्स के पास बैठ लें। इस सिलसिले में आप देखें कि हमें सहाबा इकराम के अमल से क्या पता चलता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का वाकया मैं आपके सामने पेश करती हूँ, वो कैसे थे और कैसा अमल करते थे। वो असहाबे सुफा में से थे, और असहाबे सुफा कौन थे, जो हर वक्त मस्जिद नबी में बैठे रहते थे और दीन सीखते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए तैयार रहते थे। तो अब असहाबे सुफा भूख से परेशान आपकी खिदमत में जब आए तो आपने पूछा इस वक्त कैसे आए, कहा कि या रसूल अल्लाह भूख खींच लाई, आपने खजूरों की प्लेट मंगवाई और हर शख्स को दो दो खजूरें दी, फिर फरमाया ये 2 खजूरें खाओ और इसके बाद पानी पियो, यही 2 खजूरें आज के दिन के लिए तुम्हें काफी होंगी, ये उनके दिन की खुराक थी बस 2 खजूरें। अब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने क्या किया, 1 खजूर खा ली और 1 छुपा ली, 1 खजूर ने दामन में रख ली उठाकर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख रहे थे, पूछा अबू हुरैरा ये खजूर किस लिए छुपा ली, किस लिए दामन में रखी, कहा या रसूल अल्लाह अपनी वालदा के लिए, वो भूखी हैं। फरमाया तुम ये खजूर खा लो, हम तुम्हारी वालदा के लिए भी तुमको 2 खजूरें दे देंगे। जब तक तो वो जिंदा रही, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु अपनी वालदा की तन्हाई के ख्याल से हज तक भी अलग ना करने गए। और आप देखें ऐसा तो होता है कि माँ बाप अगर कोई चीज खाने लगे ना और पता चले ये एक है या थोड़ी है, कहते हैं कि अच्छा मुंह में भी निवाला लेके जा रहे हो, कहते हैं अच्छा ये मेरी बेटी के लिए छोड़ दे, ये मेरे बेटे के लिए छोड़ दे, ये इनको पसंद है। लेकिन कितनी दफा ऐसा होता है कि औलाद ये कहे कि हम अपने माँ बाप के लिए ये चीज छोड़ दे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह की इस हदीस से क्या पता चलता है कि भूखे हैं दिन भर से, 2 खजूरें मिली हैं और 1 अपनी माँ के लिए रख ली है। और आप देखें आप बाहर से आते हैं शॉपिंग करके, बाहर से मॉल से घूमकर, आप बाहर से किसी प्ले ग्राउंड से आते हैं, माँ बाप और बच्चे इकट्ठे दाखिल होते हैं, बच्चे क्या करते हैं शोर करते जाते हैं, यहाँ तो ऐसे गर्मी है ही नहीं, ये भी बहुत नशुकरी लगती है कि बच्चे कहते हैं कि इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी। और बाज़ औक़ात लोग औरतें हैं और मर्द भी सभी हम कहते हैं गर्मी देखनी हो तो जाना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान, गर्म इलाकों में जहाँ एसी भी नहीं है और वाकई गर्मी है, गर्मी है नहीं कि हम उतना गर्मी का इजहार करें, ये भी नाशुक्री है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं, वालदा और वालिद क्या करते हैं चीजें उठाते हैं और कहते हैं कि वो कहते हैं हमें तो प्यास लगी है, वो पानी लाते हैं और माँ बाप बच्चों को पिलाते हैं। कितनी दफा ऐसा होता है कि बच्चे ये कहते हैं कि हम आपको हम पानी देते हैं, लाइए हम आपके सॉक्स उतार दें, लाइए हम ये चीजें उठा दें। ये छोटी छोटी बातें हैं और इसमें हमें सबको ये देखना चाहिए कि हम अपने वालदेन की खिदमत या उनका ख्याल कितना रखते हैं। अच्छा फिर यहाँ पे ये भी एक मसला है कि बाज लोग ऐसे भी हैं कि जिनके वालदेन गैर मुस्लिम हैं, तो उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, यानी खिदमत का इतना हक है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने क्या कहा, ये कहा कि अगर वालदेन काफिर भी होना तो उनके साथ हुस्ने सलूक करें, वसाहिब हुमा फिद दुनिया बिल मारूफ, दुनिया में उनके साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए। हजरत असमा रजी अल्लाह के बारे में आता है, ये बुखारी की रवायत है, कि उन्होंने पूछा कि मेरी वालदा आई हैं और वो मुशरिका हैं और वो दीन को पसंद नहीं करती, तो मैं उनके साथ क्या करूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू उनके साथ सिली उम्मिक, अपनी वालदा के साथ सिला रहमी कर, उसके साथ हुस्ने सुलूक कर। तो वालदैन काफिर भी हों, उनके कपड़े धोना, कपड़े अच्छे पहनाना, उनको खाना देना, उनको दबाना, उनका बिस्तर बिछाना, उनके कपड़े इस्त्री करना, उनके कमरे की सफाई करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। और इस सिलसिले में हमें और भी ऐसी अहदीस मिलती हैं कि जिनसे ये बात पता चलती है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? फरमाया, क्या तेरी माँ जिंदा है? जवाब दिया, नहीं। पूछा, क्या खाला है? गुजारिश की, हाँ है। फरमाया, तो इससे नेकी कर, यही तेरी तौबा है। आप सोचे कि गुनाहों की माफी का जरिया भी वालदैन है, कि अगर औलाद कभी कोई जिंदगी में गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्या करें? वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक करें। अगर माँ नहीं है तो खाला, अगर वालिद नहीं है तो फिर चचा, जो उनके करीबी रिश्तेदार बनते हैं, तो उनके साथ हुस्ने सुलूक करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, हम लोग भी आयात पढ़ते हैं, हम भी अहदीस पढ़ते हैं, और हम उनमें से गुजर जाते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह के सहाबा और सहाबियात जब ये अहदीस पढ़ते थे, वो उस पे से गुजरते नहीं थे, वो इन पे सोचा करते थे, वो रोया करते थे, वो फिक्रमंद होते थे कि किस तरह हम अपने वालदैन को खुश करें और किस तरह इनके जरिए से जन्नत कमाएं। और इस सिलसिले में आप एक बात याद रखिएगा कि वालदैन अगर उनका हम दिल दुखाते हैं तो दुनिया ही में उनका दिल दुखाने की सजा मिलती है, कि वालदैन की नाफरमानी की सजा अगर वो बददुआ कर दे तो वो दुनिया ही में मिलती है, आखिरत के लिए नहीं छोड़ दी जाती। इस सिलसिले में एक बड़ा मशहूर वाकया है जिसे बुखारी ने रवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कोई लड़का नहीं बोला मगर तीन लड़के, एक तो ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे जुरेज का साथी, और तीसरा एक और लड़का था जो माँ की गोद में बोला। जुरेज का किस्सा क्या है कि वो एक आबिद शख्स था। आबिद कौन होता है? इबादत करने वाला, बहुत नेक। सो इसने एक इबादत खाना बनाया, इसमें रहता था। इसकी माँ आई, वो नमाज पढ़ रहा था, माँ ने पुकारा, ओ जुरेज। वो बोला, ए रब, मेरी माँ पुकारती है और मैं नमाज में हूँ। आखिर वो नमाज ही में रहा। उसकी माँ चली गई, फिर जब दूसरा दिन हुआ, फिर आई और पुकारा, ओ जुरेज। तो बोला, या अल्लाह, मेरी माँ पुकारती है और मैं नमाज में हूँ। आखिर वो नमाज में ही रहा। इसकी माँ बोली, या अल्लाह, इसको मत मारियो जब तक के बदकार औरतों को ना देख ले। फिर बनी इसराइल ने जुरेज का और इसकी इबादत का चर्चा शुरू किया, और बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जिसकी खूबसूरती से लोग मिसाल देते थे। वो बोली, अगर तुम कहो तो मैं जुरेज को फितने में डालूं। फिर वो औरत जुरेज के सामने गई, लेकिन जुरेज ने इसकी तरफ ख्याल भी ना किया। आखिर वो चरवाहे के पास आई जो जुरेज के इबादत खाने के पास रुका करता था। वो दिन भर बकरियां चराता और जुरेज की जो इबादत गाह थी, जहां वो इबादत करता था, वहां पे आके रात को सो जाता था। अब वो औरत उस चरवाहे के पास गई और उससे इसने सोहबत की, वो हामला हुई। जब बच्चा जना तो बोली कि ये बच्चा जुरेज का है, यानी झूठ बोला। लोग ये सुनकर जुरेज के पास आए और उससे कहा, उतर और इसका इबादत खाना गिरा दिया और इसको मारने लगे। वो बोला, क्या हुआ तुमको? उन्होंने कहा, तूने इस बदकार औरत से जिना किया है, इसने तो तुझसे एक बच्चा भी जना है, यानी लोग कहने लगे। जुरेज ने कहा, वो बच्चा कहाँ है? लोग उसको लाए। जुरेज ने कहा, जरा मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दो। फिर नमाज पढ़ी और इस बच्चे के पास आया और इसके पेट को एक ठोंसा दिया, यानी ऐसे उसको जोर से मारा। वो बोला, ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? वो बोला, फलां चरवाहा है। पैदा हुआ बच्चा था और अल्लाह ने उसको जबान दे दी और उसने बताया कि ये जुरेज मेरा बाप नहीं है, फलां बकरियां चराने वाला। ये सुनकर लोग दौड़े जुरेज की तरफ के उसको चूमने चाटने लगे और कहने लगे, तेरा इबादत खाना हम सोने से बना देते हैं। वो बोला, नहीं, मिट्टी से बना दो, जैसा था वैसा ही बना दो। इस हदीस से हमें क्या पता चलता है? ये बात पता चलती है ना कि माँ जब मिलने के लिए आई थे जुरेज, वो इबादत करते थे नफली और नमाज में थे, लेकिन माँ 2-3 दिन आती रही, अपने बेटे से उनकी मुलाकात ना हो सकी, तो फिर क्या हुआ कि माँ ने उसको बददुआ दे दी, तुझे मौत ना आए जब तक के तू बदकार औरतों को देख ना ले। तो अब इन्होंने बदकारी तो नहीं की, लेकिन दुनिया में बदकार मशहूर हो गए। और इस पर उनसे पूछा गया, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये मेरी माँ की बददुआ है जो मुझे लग गई है। तो आप सोचें, वो तो नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने माँ की बात ना सुनी और वो नफली नमाज थी, इससे ये पता चलता है कि नफली जो काम हम कर रहे हो ना, उनको छोड़कर अगर हमें वालदैन बुला रहे हो, उनको हमारी जरूरत हो, तो नफली इबादत पर वालदैन की अतात और जरूरत मुकद्दम है। मैं अक्सर इस पे सोचती हूँ कि वो तो नफल नमाज पढ़ रहे थे, औलाद तो फोन पर होती है, चैटिंग कर रही होती है, चैटिंग, फिल्में, मूवीज, इधर उधर की बातें, खेलना, और फिर वालदैन की बात नहीं सुनते। और वालदैन बोल रहे होते हैं और पुकार रहे होते हैं और बुला रहे होते हैं ना, और खप रहे होते हैं, और बच्चे समझते हैं कि हाँ इनकी आदत है, बोलते रहे, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि वालदैन की आदत है कि बोलते रहे, वो मजबूर हो जाते हैं कि वो बोलें। तो औलाद की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वालदैन की खिदमत करें और उनका ख्याल करें, और अपनी जो ऐसी एक्टिविटीज है ना, उस पे अपने वालदैन की खिदमत और जरूरत को मुकद्दम जाने। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ वाकयात भी सुनाती हूँ कि जो नेक लोग गुजरे हैं, जब ये आयात और अहदीस पढ़ते थे तो फिर वो कितना डरते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बेटे थे मोहम्मद बिन हनफिया, अपनी वालदा के बड़े खिदमत गुजार थे, अपने हाथों से उनके बालों में रंग लगाते थे, खजाब, कंघी करते थे, उनकी चोटी बनाते थे। एक मरतबा घर से निकले तो हाथों में मेहंदी का असर था, लोगों ने पूछा, फरमाया कि माँ के बालों में खजाब लगा कर आया। अब सोचिए तो सही, ये है हमारे लिए उसवा, ये है असल अमल के जरूरत का ख्याल रखा जाए। हम कहते हैं ये अम्मी है ना खैर है, ये बाबा है ना खैर है, ऐसे समझते हैं ना, हालांकि खैर नहीं है। मशहूर सूफी हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने माँ की खिदमत से बढ़कर किसी शय में फैज नहीं पाया। एक रात वालदा साहबा ने मुझसे पानी मांगा, मैंने घड़े को देखा, प्याले को देखा तो वो खाली था, फिर घड़ा देखा तो इसमें पानी नहीं था। मैं दौड़ता हुआ नदी पर गया और वहां से पानी लाया, मगर इतनी देर में मेरी वालदा सो चुकी थी। मैं पानी का कूजा हाथ में लिए सारी रात इस इंतजार में खड़ा रहा कि वो उठे तो पानी पेश करूं। सख्त सर्दी का मौसम था, मेरा हाथ ठंडा हो गया, ठठर गया, लेकिन मैंने वालदा साहिबा को जगाना मुनासिब न समझा। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो मुझे इस हालत में खड़ा देखकर बहुत खुश हुई और फिर पानी पीकर मुझे बेशुमार दुआएं दी। इस दिन से मैंने देखा कि मेरा दिल अनवारे इलाही से मामूर हो गया, भर गया अल्लाह के नूर से। तो जहन काम नहीं करता, तो क्या करना चाहिए? माँ बाप से दुआएं लेनी चाहिए। कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो माँ बाप से दुआएं लेनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। मशहूर ताबई थे इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, अपनी वालदा का बे इंतहा एहतराम करते और इनकी ख्वाहिशात को पूरा करने का ध्यान रखते। इनकी बहन का बयान है कि उनकी वालदा मदीना की रहने वाली थी, इसलिए उन्हें रंगीन और नफीस कपड़ों का बहुत शौक था। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इस शौक का इतना लिहाज रखते कि जब वालदा के लिए कपड़ा खरीदते तो कपड़े की लताफत और नरमी को देखते और इसकी मजबूती का ख्याल ना रखते कि कितने दिन चलेगा। कहते कि मेरी माँ को नरम पसंद है तो नरम होना चाहिए। ईद के लिए खुद अपने हाथ से अपनी माँ के कपड़े रंगते। मैंने कभी उनको अपनी माँ के मुकाबले में बुलंद आवाज से बात करते नहीं सुना। जब माँ से बातें करते तो इतनी आहिस्ता से करते गोया के राज की बात कर रहे हूँ, इतना अदब और एहतराम करते। और हम अपने ईद के कपड़े बना लेते हैं, कभी माँ बाप के कपड़ों की भी फिक्र की है? हैं? हमें सोचना चाहिए ना। एक मुझे माँ ने बताया कि जब उसके बेटे की पहली तनख्वाह आई तो वो अपनी माँ के लिए हीरे की अंगूठी लेकर आया कि मेरी माँ को हीरे की अंगूठी मैं देना चाहता हूँ, ये खुशी का मौका है। तो कितनी अच्छी बात है ना कि उसको याद था कि मेरी माँ या मेरा बाप। और इसी तरह मैं एक ऐसे नौजवान जोड़े को, मैं ऐसा नहीं कहती कि सब बच्चे ऐसे हैं, माशाल्लाह बहुत से बच्चे बहुत अच्छी खिदमत करते हैं, कि एक नौजवान जोड़ा था और शादी हुई तो माँ बाप ने शादी होते ही उनको अलग किया क्योंकि उनकी अच्छी हैसियत थी। तो जब बच्चे अपने घर के अंदर जब कोई चीज लाते तो पहले पता करते कि हमारे माँ बाप को जरूरत तो नहीं है। अपना फर्नीचर बदलने से पहले उन्होंने अपने माँ बाप का फर्नीचर बदला। अपनी क्विल्ट चेंज करने लगे तो कहा कि नहीं, हमें अपने माँ बाप की क्विल्ट चेंज करनी है। इसको कहते हैं कि जन्नत की फिक्र करना और रब को राजी करने की कोशिश करना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी आपने सुना होगा। दुनिया उनको इमाम मानती है और उनके मसलों पर अमल करती है, लेकिन उनकी वालदा वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसाइल को नहीं मानती थी। ये नहीं कि मतलब इनकार करती थी, वो एक और कोई थे आलिम जो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मसाइल पूछ लेते थे, तो और कितने दूर मील पर रहते थे, तो जब उनको कोई मसला पेश आता था ना वालदा को, तो कहती थी अबू हनीफा उठ और मुझे वहां लेके चल। तो इतनी दूर का सफर करते तो वो इमाम पहले तो वालदा से मसला पूछते, फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कहते आहिस्ता से बता दे इसका जवाब क्या है, फिर उनसे जवाब पूछते और फिर उनकी वालदा को बता देते, फिर उनको सुकून आ जाता उनकी वालदा को कि फला इमाम ने मुझे ये मसला बताया। मेरे होता है ना घर की चीज की बाजू का इतनी कदर नहीं होती, दुनिया उसको मान रही होती है, तो कहती है कि अच्छा अब मुझे तसल्ली हो गई है। और फिर इमाम हनीफा खरामा खरामा अपनी वालदा को घर ले आते, कितने माइल का सफर करके लेके जाते हैं ना। तो आप सोचें कि जो बड़े लोग गुजरे और जो अच्छे लोग गुजरे वो अपनी वालदा की कैसे खिदमत करते थे और उनका कैसे ख्याल करते थे। अच्छा आप में से कितने खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनके वालदैन दुनिया में मौजूद हैं? कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। कितने लोग हैं जिनके दोनों मौजूद हैं, माँ और बाप दोनों? अच्छा देखें 50% के हाथ खड़े हैं, अक्सर लोगों के हाथ खड़े नहीं। तो किसी के दोनों चले गए हैं और किसी के माँ बाप दोनों फौत हो चुके हैं और किसी का एक दुनिया में बाकी है, वो बहुत बदकिस्मत है, वो बहुत बदनसीब है जिसके माँ बाप दुनिया में दोनों या एक मौजूद हों और वो इनकी खिदमत करके उनको राजी करके जन्नत का मुस्तहिक ना हो। इसलिए कि जब वो जिंदा हो तो उनकी खिदमत करके जन्नत कमाना लोगों बहुत आसान है। ये कहना तो आसान है जो मैं कह रही हूं, लेकिन असल में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये एक बात है जो तसल्ली देती है कि नामुमकिन नहीं है, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वो लोग जो अपने माँ बाप से दूर हैं वो रोते हैं कि जब माँ बाप पास थे तो खिदमत ना की। अब एहसास होता है जब खुद माँ बाप बने तो पता चला माँ बाप क्या चीज होती है, अब चाहते हैं तो खिदमत कर नहीं पाते। यहाँ पे भी आप देखें तो हमें ये दुआ मिलती है, वक्फिद लहुमा जनाह जुल्ली मिन रहमती वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। नरमी और रहम के साथ इनके साथ झुके रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। ये दुआ क्यों बताई गई? आप गौर करें, पहले तो कहा कि दिल में भी नागवारी नहीं होनी चाहिए और जबान पर भी नहीं होनी चाहिए, फिर कहा कि ये कंधे जो है ना, बाज़ औक़ात अम्मी और अब्बू कुछ कहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एक कंधा इधर को ऊपर किया, कभी इधर को ऊपर किया, है ना, अपने कंधे ऊपर करके, कंधे उचका के, कंधे उठा के ना जवाब देते हैं, नहीं ऐसे कभी दोनों कंधों को हिला के कहते हैं, यानी हमें आई डोंट केयर, ये इसका मकसद होता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। तो अब यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कंधे उठाने नहीं है, आई डोंट केयर नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि कंधों को झुकाओ। जना हर जुल्ली, जुल जो लफ्ज है इसके अंदर यह है कि अतात और फरमाबरदारी, के वालदैन का कहना माना। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बाज़ बच्चे सिर्फ माँ की मानते हैं, बाप की नहीं मानते, दोनों की इज्जत करनी है। बाज़ औक़ात हम औरतों से ये गलती होती है कि बाप की जो इज्जत और एहतराम है वो अपने हम बच्चों को नहीं सिखाते, और बाज़ औक़ात बाप वालदा की खिदमत के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर पाता, और माँ बाप दोनों में कमी होती है। हर इंसान में कमी होती है, खूबियां भी होती हैं कमियां भी होती हैं, जो कमी होती है उसको इग्नोर करना चाहिए, जो खूबियां होती हैं उनको जहन में लाकर उनकी खिदमत करनी चाहिए, और दोनों की करनी है। लाहुमा, ये नहीं है कि अम्मी अच्छी लगती हैं या अबू अच्छे लगते हैं, दोनों जैसे भी हों, अगर वो जुल्म भी कर रहे हों। जैसे एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स गया था और उसने पूछा था कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर किसका हक ज्यादा है? तो आपने फरमाया था कि तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का, और फिर कहा था कि तेरे बाप का। तीन दफा माँ का कहा और एक दफा बाप का कहा, क्योंकि माँ का उसकी परवरिश में पैदाइश में मामला ज्यादा होता है, तो इसलिए खिदमत का हक माँ का ज्यादा है। लेकिन अदब एहतराम और ताजीम, इसमें दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि मतलब दोनों की औलाद खिदमत करे। और एक बात जो बहुत अहम है, मिनर रहमा, के जो अतात और फरमाबरदारी करनी है नरमी से करनी है। बाज़ औक़ात बच्चे जैसे अम्मी को पानी का गिलास दिया तो ला के यूं पटक दिया, है ना, या अब्बू के लिए कोई काम किया तो जोर से लाकर ये ले, तो नहीं, रहमत के, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। आपने वो हदीस भी सुनी होगी कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई माँ बाप की तरफ मोहब्बत से एक नजर देखता है तो उसको हज मबरूर का सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई 100 दफा देखे, तो कहा कि फिर 100 दफा हज मबरूर का सवाब मिलता है। तो आप सोचें कि जब वालदैन को मोहब्बत से देखने का अजर इतना है कि हज का सवाब मिले, जो हज इतना मुश्किल होता है, और हज भी वो जो के मकबूल हो, تو پھر ان کی خدمت کا اجر کتنا ہوگا اور اس کا مقام کتنا ہوگا. اچھا اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے, جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں پھر وہ کیسے خدمت کریں اور وہ کیسے جنت کمائیں. اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو اسید کی روایت ہے کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک شخص نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا والدین کی وفات کے بعد بھی کچھ ایسی صورتیں ممکن ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے؟ فرمایا جی ہاں, چار صورتیں ہیں. ماں باپ کے لیے دعائے استغفار کرنا, ان کے کیے ہوئے عہدوں اور وعدوں کو جو وصیتیں ہیں ان کو پورا کرنا, نمبر تین باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کی عزت اور خاطرداری کرنا, نمبر چار اور ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنا جو ماں باپ کے واسطے سے تمہارے رشتہ دار ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں. اور آپ دیکھیں کہ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں, اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا, بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ایسا لگتا ہے بہت زمانے ہو گئے, بہت سال ہو گئے, اور دنیا کی روا روی اور کاموں کی دوڑ میں بعض اوقات اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ دو مغفرت کی دعائیں یا دو جملے ہی ان کے لیے کہہ دیا کرے نا. اور خود بھی دعا کرنا اور اپنی اولاد کو بھی کہنا کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے, یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, ورنہ پھر جنت کیسے کمائیں گے اور کس طرح کمائیں گے. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو ان کی وصیتیں ہیں ان کو پورا کرنا, جو جائز ہیں, ان کا کوئی وعدہ ہے تو اس کو پورا کرنا. اگر باپ نہیں ہے تو اگر چچا ہے, دادی ہے, پھپھو ہے, جو بھی اس کے حوالے سے جو رشتہ دار ہیں ددھیال والے, ان کا خیال کرنا. ماں نہیں ہے تو ننھیالی رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنا, یہ نہیں کہ ماں باپ ختم اور پھر سب کچھ ختم. اور یہاں کا حال کیا ہے کہ بچوں کو رشتے کی پہچان ہی نہیں ہے کہ ماموں کون ہوتا ہے تو چچا کون ہوتا ہے, پھپھو کون ہوتی ہے تو خالہ کون ہوتی ہے نا. تو یہ ماؤں کی اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو رشتوں کی پہچان کروائیں, ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں تاکہ بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں. اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو سنا ہوا بھی ہے اور پڑھا ہوا بھی ہے کہ ایک شخص وہ بوڑھا ہو گیا اور اس نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی, وہ فاضل ایک بڑا آدمی بن گیا. اور پھر وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ ایک دن ایک کوا جو تھا نا وہ آ کے صحن میں بیٹھ گیا, تو میں نے بچے سے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ کوا. پھر تھوڑی دیر بعد باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے, اس نے کہا کوا. اس نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, کہتا بتایا تو ہے کہ کوا. پھر پوچھا تھوڑی دیر بعد باپ نے کہ یہ کیا ہے, کہا کہ کوا. کہا ابا کتنی دفعہ بتایا ہے کہ کوا, کہتا ہے کہ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو کہنے لگا ابا ہزار دفعہ بتایا کہ یہ کوا ہے. پھر وہ باپ اپنی ایک ڈائری نکال کر لایا اور کہنے لگا کہ بیٹا جب تم چھوٹے سے تھے نا تو دیوار پر اسی طرح صحن میں کوا آ کر بیٹھا تھا, اور تم نے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے, تو میں نے کہا کوا. تم نے 25 دفعہ پوچھا, 25 دفعہ. بعض جگہ کہیں کوئی کہتے ہیں کہ 100 دفعہ, یعنی بچہ جیسے بار بار کہتا ہے نا, چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ہر دفعہ کہتا رہا کہ یہ کوا, اور میں خوش ہوتا رہا کہ میرا بچہ مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے اور یہ مجھ سے سیکھ رہا ہے, اور میں اس کی ہر دفعہ پوچھنے پر نا مسکراہٹ دیتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ میرا بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے. تم نے 25 دفعہ پوچھا اور میں مسکراتا رہا, میں نے 5 دفعہ پوچھا اور تم نے بیزار ہو کر اور غصے کے ساتھ اور جھڑک کر کہا کہ کتنی دفعہ بتاؤں, 1000 دفعہ تو بتایا کہ یہ کوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بڑھاپا جو ہے نا وہ بچپن کی طرح ہوتا ہے, جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, چلتے ہیں تو لڑک جاتے ہیں, کھاتے ہیں تو ان سے گرتا ہے, اور بات کرتے ہیں تو توتلی سمجھ میں نہیں آتی, اور بہت سی چیزوں میں اچھا ان کا معاملہ نہیں ہوتا. ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے بچپن کی طرف لوٹا دیتا ہے. پہلے تو ان کی باری تھی, اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ جب بچوں کو پالتے ہیں نا, بیمار بھی ہو نا بچے, ماں باپ دعائیں مانگتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, عمرہ ادا کرتے ہیں, لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دے. اس کی زبان نہیں چلتی, زبان چلنے لگے, اس کے نا ہاتھ کام نہیں کرتا, ہاتھ کرنے لگے, یہ دیکھ نہیں سکتا نا کسی طرح دیکھنے لگے, یہ بول نہیں سکتا نا کسی طرح بولنے لگے, لوگوں سے کہتے ہیں کوئی دعائیں بتاؤ نا. اور باپ ماں باپ ہمیشہ اولاد کی نا زندگی کی آرزو کرتے ہیں, لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, जब बीमार हो जाते हैं तो बोझ बन जाते हैं, और औलाद सोचती है कि कब हमारे वालिदैन फौत होंगे ना, कब हमारी जान छूटेगी, और फिर सोचते हैं कि अच्छा छोटा बेटा सोचता है कि अच्छा ये बड़े भाई क्यों नहीं अपने पास रखते, आखिर हमारी ही जिम्मेदारी तो नहीं ना, उनके तो वालिदैन है ना। बड़े भाई कहते हैं ये दरमियान वाले जो हैं इनका कोई नहीं जिम्मेदारी बनती कि वो अपने वालिदैन को संभालें, इनकी भी तो जिम्मेदारी तो बनती है ना, हमारा ही तो काम नहीं ना कि हम इनको पैसे भेजें और इनकी जरूरियात वो पूरी करें। एक बात याद रखिए, वालिदैन सबके होते हैं, लेकिन खुशकिस्मत ये है जो आगे बढ़कर नेकी को थाम ले। वालिदैन नेकी, बरकत और रहमत की शक्ल में हमारे घरों में मौजूद हैं, कभी उनको बोझ नहीं समझना चाहिए, कभी उनसे बेजारी का इजहार नहीं करना चाहिए। गो के बुढ़ापे में वालिदैन को संभालना बहुत कठिन है, और अगर वो बीमार हो, अगर उनको कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि मामला जन्नत का है, मामला रब की रजा का है, मामला गुनाहों की मगफिरत का है। उनसे रूठना नहीं चाहिए, उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, और उनसे मुकाबला नहीं करना चाहिए। अगर बड़ा ना करे, अगर दरमियान वाला ना करे, हमारी जो क्लास कुरान की हो रही थी तो उसमें अमल के लिए उसूल एक औरत ने बताया कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने सास ससुर को कोई भी ना संभाले ना, मैं उनको संभालूंगी, कि बात जन्नत की है ना। मैं सोच रही थी कि हम में से अक्सर लोग आज तक इसी चक्कर में रहे कि माँ बाप की खिदमत तो है, सास ससुर की कहाँ लिखी हुई है, देख कर बताएं, पढ़कर बताएं, कोई आयत बताएं। आप ये बात याद रखें कि कुछ चीजें ना डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। कुरान ने वबिल वालिदैनी एहसाना कहा, और मैंने आपको अभी ये भी बताया कि कुरान में वैसे तो बहुत सी आयतें हैं, लेकिन खास तौर पर वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक के लिए 12 जगह पर आयतें आई हैं, यानी माँ और बाप दोनों से हुस्ने सुलूक करना, लड़की के हो या लड़के के। और आप ये बात याद रखें कि माँ बाप दोनों की खिदमत करना ये औलाद की जिम्मेदारी है, और औरत की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने शोहर को खुश करे। अगर वो अपने शोहर की खिदमत करती है, उसकी अताअत करती है, उसको राजी करती है, तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। तो औरत की जन्नत उसके शोहर को राजी करने के साथ मशरूत है, और लड़के की जन्नत उसकी माँ के साथ मशरूत है। तो ट्राई एंगल बनती है ना, कि लड़के की जिम्मेदारी है अपने वालदैन को खुश करे, और औरत की जिम्मेदारी है कि अपने शोहर को खुश करे। और हमें एक हदीस से भी पता चलता है, मिशकात की हदीस है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ने इसको रवायत करती है, कि औरत पर उसके शोहर का हक ज्यादा है, और शोहर पर उसकी माँ का हक उसकी बीवी से ज्यादा है। तो आपको अपना शोहर अच्छा लगता है, उसकी तनख्वाह भी अच्छी लगती है, उसकी गाड़ी भी अच्छी लगती है, और वो जब डायमंड की अंगूठी लेकर आता है, और वो सोने की ईंट लेकर आता है, और वो जब घुमाता है फिराता है, हमें सब बहुत अच्छा लगता है, जब तोहफे तहाइब, और उसकी वजह से अल्लाह हमें औलाद देता है, हमें सब चीजें अच्छी लगती हैं, और हम माँ बन गए, जन्नत हमारे कदमों के नीचे आ गई। तो क्या हमें शोहर की जन्नत नहीं अच्छी लगनी चाहिए? अगर शोहर के वालदैन नाराज होंगे तो शोहर का दिल खराब होगा, वो उदास होगा, और फिर सबसे बड़ी बात, उसकी उदासी और नाराजगी को भी छोड़ दें, नहीं उसका रब नाराज हो जाएगा, कि रब की रजा बाप की रजा में है। और दूसरी बात ये कि माँ बाप की खिदमत में जन्नत मिलती है। और हम क्या कहते हैं कि इतने नादाम मुसाफिर के ही देखे ना सुने, अपनी समझी हुई मंजिल का पता भूल गए। और कुछ लोग आगे बढ़कर काम कर जाते हैं, और कुछ लोग सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कानून दानियां पैदा करते रहते हैं। और ये जो वालदैन की खिदमत है, सिर्फ ये नहीं कि हमें करने को कहा गया, बनी इसराइल के लिए भी यही थी, यानी तौरात में, इंजील में, तौहीद की तालीम के बाद यही बात थी कि तू अपने माँ बाप को इज्जत दे, ताकि तेरी उम्र इस जमीन पर खुदा तुझे देता है दराज हो। खुरूज में ये बात है। फिर इसी तरह तौरात में एक और जगह पर है, तुम में से हर एक अपनी माँ और बाप से डरता रहे। तो आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो? कितने लोग ये चाहते हैं कि लंबी उम्र मिले? देखिए, इंसान ये तमन्ना करता है ना, ख्वाहिश करता है कि उसकी लंबी उम्र हो, तो वो भी तब है कि माँ बाप की खिदमत की जाए, रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक किया जाए, और रिश्तेदारों में सबसे ऊंचा दर्जा वालदैन का है। ये जितनी भी बातें, आयात और अहदीस हमने सुनी हैं, इनसे क्या बात फिर हमें पता चलती है, हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह ताला की अताअत के साथ साथ, अल्लाह ताला का कहना मानने के साथ साथ, अपने माँ बाप को खुश करना, उनकी अताअत करना, उनकी खिदमत करना, इन सब चीजों की फिक्र करनी चाहिए। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग देर कर दें, और कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और हमारी जन्नत हमसे रूठ जाए। अगर हम जन्नत चाहते हैं वालदैन के कदमों में और उनकी खिदमत में तलाश करें। अगर हम निजात चाहते हैं तो वो भी फिर वालदैन का कहना मानकर हम करें। अगर हम घर बैठे हज और उमरे का सवाब चाहते हैं तो भी माँ बाप की खिदमत हमें मिलती है। और इसी तरह उम्र में बरकत या रिस्क में बरकत, रिस्क ज्यादा हमें मिले तो वो भी इस सूरत में मिलेगा कि हम अपने माँ बाप को खुश करें। तो ये था आज का हमारा दरसे कुरान के वबिल वालिदैनी एहसाना। और आप ये देख लें कि जिस तरह वालदैन हमें सारी जिंदगी दुआएं देते रहते हैं तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वालदैन की खिदमत करें, उनको दुआएं दें। और अक्सर आप ये भी सोचे, हम में से जो लोग छुट्टी जाते हैं वालदैन की खिदमत करने के बजाय उनसे खिदमत लेते रहते हैं। अम्मी खाना पका रही हैं, कपड़े सिलवा रही हैं, कपड़े धो रही हैं, इस्त्री करके दे रही हैं, उनको लग रहा है कि रंगत बहुत बदल गई है, कमजोर हो गए हैं आप, और ये मेरी बच्ची की ये ख्वाहिश है, ये इसको ये बहुत पसंद था, ये भी खिला दूं, ये भी पिला दूं, ये भी साथ दे दूं। तो कभी आपने भी सोचा कि अच्छा आपके छुट्टी जाएंगे तो माँ बाप की खिदमत करेंगे? हम कहते नहीं, अब अपने घर में असल में काम करना आता है ना। अब मुझे अम्मी के किचन में, और अब वो हालात बदल गए, और अब भाई का घर, और अब मुझे समझ नहीं आती कि कैसे काम करूं, कैसे खिदमत करूं ना। नहीं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, अगर तुम लोग जो है सवाले बनकर रहो, यानी नेकोकार बनकर रहो, उनकी खिदमत करो, तो ऐसे लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूरों पर मुतनबे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। तो आखिरी आयत क्या है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, अल्लाह खूब जानता है कि अगर दिलों में ही वालदैन का एहतराम नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, उनकी खिदमत का जज्बा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है ना। वालदैन औलाद से कभी दूर नहीं होना चाहते, लेकिन औलाद बाज़ुकात वालदैन से बेनियाजी को पसंद करती है, दूर रहना चाहती है ना। तो ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी जन्नत का सौदा किसी कीमत पर नहीं करना, अपनी जन्नत को किसी कीमत पर रिस्क पर नहीं डालना, उनको रूठने नहीं देना, उनका दिल खराब नहीं करना, उनको दुखी नहीं करना। आप सोचें कि अगर हम अपने वालदैन को अपने रवैयों से दुखी कर देंगे तो फिर हमने तो रब को नाराज कर दिया, हमने तो जन्नत को गंवा दिया ना। तो आज के इस दर से आइए सब मिलकर ये अपने दिलों में फैसला करते हैं, अज्म करते हैं, और ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल इज्जत, तू हमें अपने वालदैन के जरिए से जन्नत कमाने वाला बना, और हमें इतनी तौफीक अता कर कि हम तुझे राजी कर लें, और इसके साथ साथ अपने वालदैन को भी। और दूसरी तरफ वालदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद पर नाजायज उनसे मुतालबात ना करें, उन पर वो बोझ ना डालें जो बर्दाश्त ना कर सकें, उनसे वो मुतालबात ना करें जो इस्लाम के खिलाफ जाते हों। यानी वालदैन की अतात का ये मतलब नहीं है कि हर जायज और नाजायज कहना माना। तो औलाद को भी खिदमत करनी है तो वालदैन को भी ये बनता है उनका जिम्मेदारी कि वो अगर बच्चों के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो बहुत ज्यादा पैसों का मुतालबा ना करें, है ना। बाज़ुकात जब वालदैन की ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती लेकिन उनकी डिमांड बढ़ जाती हैं, बाज़ुकात बाज़ जगहों पे बाज़ वालदैन बहुत केयरफुल होते हैं, बाज़ कमी बेशी भी कर जाते हैं, तो टू वे ट्रैफिक है। यानी वालदैन ने अपना फर्ज तो अदा किया और वो करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वालदैन को भी औलाद का ख्याल करना चाहिए, लेकिन औलाद को अपनी जन्नत को कमाने की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। आप में से किसी को कोई सवाल है? अच्छा, सवाल ये है कि हम जो दीन सीखते हैं तो अगर हमारे वालदैन को नहीं पता तो क्या हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी खिदमत के साथ साथ हम उनको दीन के बारे में भी बताएं? तो बिल्कुल जरूर ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह के बारे में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह की वालदा मुशरिका थी, काफिर थी, और वो दिल ही दिल में बहुत कूटते थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की कि या रसूल्लाह मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें कबूल हक की तौफीक दे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ की कि इलाही अबू हुरैरा की माँ को हदायत दे दे, और वो मुसलमान हो गई। जब वो घर गए ना तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और नहाने की आवाज आ रही है। यानी दुआ अल्लाह के नबी ने की और घर पहुंचने तक माँ नहा रही थी कि मुझे ले चलो रसूल अल्लाह के पास कि मैं कलमा पढ़ लूं। तो औलाद की ये जिम्मेदारी बनती है कि बाकी खिदमत के साथ साथ वालदैन को दीन इस्लाम की तालीम देना, उनके लिए दुआ करना, उनके लिए हर वक्त दुआ गो रहना, ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी तो दुआ की थी ना, रब्बा नगफिरली वले वालिदैया, हालांकि उनके वालिद काफिर थे लेकिन उन्होंने वादा जो किया था उस बिना पर की थी। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी ये दुआ मिलती है, रब्बिगफिरली वले वालिदैया, सूरत नूह में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ये फिक्र करनी चाहिए, वालदैन का ईमान बढ़े, उनका दीन बढ़े, और अगर उनको कोई सही दीन की बात नहीं पता, सही इस्लाम का तकाजा नहीं पता, तो शर्माए नहीं, जरूर बताएं ताकि वो दीन इस्लाम पर मौत आए और उनकी बेहतरीन मुसलमान होने की हालत में मौत आए। कोई और सवाल? सवाल ये है हमारी यूथ की तरफ से कि क्या सास ससुर की भी उतनी ही खिदमत करनी है जितनी के अपने माँ बाप की करनी चाहिए। मैं वैसे इसका दर्स में जवाब दे भी चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर बता देती हूँ कि असल में कुरान ये कहता है वबिल वालिदैनि एहसाना, कि दोनों वालदैन यानी माँ बाप दोनों के साथ हुस्ने सलूक किया जाए, और ये लड़की लड़के को और मर्द और औरत को तमाम मुसलमानों को मुखातिब करके कहता है कि तुम अपने वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। तो लड़के को भी अपने वालदैन की खिदमत करनी है और उनकी इज्जत करनी है, और लड़की को भी करनी है। अब जब शादी हो जाती है तो लड़की अपने घर से तो आ जाती है, अब अपने शोहर के साथ आकर रहने लगती है। अच्छा, शोहर कहाँ से आता है? अल्लाह के बाद, सास ससुर के वजूद की वजह से, उनकी शादी होने के बाद उनकी वजह से शोहर पैदा होता है, ठीक है। फिर ये कि बच्चे की तरबियत में, उसकी परवरिश में शोहर के माँ बाप का यानी लड़की के सास ससुर का बड़ा अमल दखल है। जैसे एक छोटा सा बीज नहीं होता, माली उसको बाग में लगाता है, फिर वो जमीन को नरम करता है, फिर पानी देता है, फिर गोडी करता है, फिर वो खाद डालता है, और हाथ उठा उठा कर दुआ करता है कि ये बीज, नन्ना सा पौधा, बड़ा सा मजबूत दरख्त बने। जब वो ट्री बन जाता है, स्ट्रांग ट्री और शेडो देने वाला और फ्रूटफुल होता है, फिर क्या होता है कि वो सास और ससुर उसको उस फ्रूटफुल ट्री को उठाकर जो बहू घर में लाते हैं उसकी गोद में दे देते हैं कि इस दरख्त के नीचे बैठो, ठंडी छांव के नीचे, इसकी तनख्वाह से मजे उठाओ और इसका फल खाओ, फूलों से फायदा उठाओ, और अब वो मियां बीवी बन जाते हैं। तो अब मुझे आप बताएं कि उस माली का कुछ हक बनता है कि नहीं बनता? यानी आम अकल की जबान में भी आप जवाब दें कि अल्लाह के बाद, अल्लाह तो है ही, उसके बाद वालदैन बच्चे की पैदाइश और परवरिश में जो रोल प्ले करते हैं, और जब फल खाने का वक्त आता है तो शादी का वक्त होता है, फिर वो उठाकर बहू की गोद में दे देते हैं। अब बहू कहे कि तुमने माँ बाप का मुंह में नहीं देखना, उनसे मिलना भी नहीं, और मैं नाराज हो जाऊंगी, तो ये कैसी बात है ना कि घरों में इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि शौहर जॉब से वापस आया तो अम्मी को पहले सलाम क्यों कर दिया, अम्मी के कमरे में क्यों गया, जब अम्मी के कमरे में गया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था, पता नहीं अपनी माँ को क्या दे दिया। तो तुम उसके एक लिफाफा के देने पर रोती हो, तुम ये तो सोचो कि उसकी वजह से उसको लिफाफे मिल रहे हैं, वो सारा कुछ उसने तुम्हारी गोद में दे दिया, तो तुम एक लिफाफे के मिलने पर रोती हो। औरतें जब सवाल पूछती हैं तो ऐसी बातें करती हैं, और उस वक्त दिल चाहता है कि मैं उनको झंझोड़ूं। आइए हम मिलकर कुरान पढ़ते हैं ना, कि कुरान इनके बारे में क्या कहता है कि वो एक लिफाफा नहीं, वो शोहर भी तुम्हारा शोहर और उसकी सारी तनख्वाह उसके माँ बाप की है, यानी लाद कहती है ना मेरी, मेरे पैसे। तो इससे अच्छा ये पता चलता है कि लड़का जो है उसको अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, और उसके साथ ही उसकी बीवी को भी। क्यों? इसलिए कि अब माली बूढ़ा हो चुका है, जब उसने बाग लगाया था तो जवान था, सलाहियती थी, कमाता था, अब वो बुढ़ापा आ गया, और अब उसको जरूरत है कि उसको कोई बिठा कर खिलाए, कोई उसको दबाए, कोई उसके कपड़े धोए, कोई उससे बहरों बैठकर बातें करे। तो अब वो घरों में लड़ाइयां होती हैं कि माँ बाप को ही वक्त देते हैं, हमारे लिए तो वक्त ही कोई नहीं है, हमारे लिए तो तवज्जो ही कोई नहीं है, टाइम ही स्पेंड नहीं हमारा शोहर हमारे साथ करता है ना। तो ये ज्यादती है, दोनों के साथ टू वे ट्रैफिक है, और माँ बाप शोहर की जन्नत है। अब आप मुझे बताएं कि औरत कहाँ से खाएगी, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगी अगर शोहर जॉब नहीं करेगा। अब बीवी कहती है कि मेरे पोर तो है नहीं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करना, अब शोहर फिर कमाई नहीं करे, फिर उसको कहना ये होना चाहिए कि शोहर के अच्छा ठीक है मैं बैठता हूँ अपने माँ बाप की खिदमत करता हूँ तो तू जा फिर कमा कर ला। हालांकि औरत की जिम्मेदारी तो नहीं है कमाना, शोहर की जिम्मेदारी है, शोहर की जिम्मेदारी अपने वालदैन की खिदमत करना भी है। तो अब वो क्या करेगा, फिर उसके लिए नागुजीर हो जाएगा कि वो कमाने जाए और बीवी उसके फराइज में उसका हाथ बटाए। और उसके फराइज क्या है कि उसकी जन्नत रूठनी नहीं चाहिए, उसका रब उसे नाराज नहीं होना चाहिए। फिर बीवी कहती है कि तू जा, घर के कामों से मैं तुझे बेनियाज करती हूँ, तेरे माँ बाप की भी खिदमत करूंगी अपने माँ बाप की तरह, और बच्चों की भी, और तेरी इज्जत की भी, और तेरे घर की भी, और तेरे माल की भी। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही हमारी जो अच्छी यूथ है, और जो यहाँ पे इस्लाम का ब्रिज भी है और इस्लाम का फ्लैग भी है, और यहाँ की सोसाइटी को हमारी यूथ बताएगी कि मुस्लिम सोसाइटी और एक मुस्लिम घर कैसा घर होता है, जिसमें माँ बाप के लिए ओल्ड हाउसेस की जरूरत नहीं होती, जिसमें 13 मई आए तो मदर डे की जरूरत नहीं होती, जिसमें फादर डे की जरूरत नहीं होती, उसमें हर डे फादर डे, हर डे मदर डे, हर लम्हा हर घड़ी जन्नत कमाई जाती है और माँ बाप को अपने साथ रखा जाता है। फिर ये जरूरत नहीं होती कि उनको कहीं ओल्ड हाउसेज में डाल दिया जाए और फेंक दिया जाए, कि मुसलमानों के घराने मिसाली आइडियल घराने होते हैं। असल में इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, जब पूरे दीन को स्टडी करते हैं ना, फिर समझ में आता है कि इस चीज का क्या मकाम है और इसको क्या मकाम देना चाहिए। जब हम एक चीज को बाहर निकाल लेते हैं ना कि ये शौहर मेरा है बस, बाकी चीजों को हम समझते नहीं। जड़ों से कभी पौधे को जब आप काटेंगी तो पौधा मुरझा जाएगा, तो वालदैन उसकी जड़ें हैं, वो गार्डनर है, माली है, अब उसका भी हक पहुंचता है जो पानी देता रहा और कमाई, ठीक है ना। हाँ, ये बात आपकी सही है, जब शादी हो जाती है तो मर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो औरत की खाने पीने की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी को अदा करे। और उसमें यह है कि अगर उसकी इतनी हैसियत हो कि वो घर ले सकता हो तो उसको जरूर लेना चाहिए, लेके बीवी को देना चाहिए। अगर ऐसा है कि वो नहीं ले सकता तो फिर वो कैसे लेकर देगा, वो कर्जा लेगा। और आपको पता है कि जो अगर कर्जा कोई लेता है अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, मतलब नागुजीर जरूरत के अलावा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकरूज जिसका कर्जा अदा ना हुआ हो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। आपने क्या फरमाया, आपके पास जो जनाजा आता था पूछते थे कि इस पर किसी का कोई कर्जा तो नहीं है? और फिर अगर कहते थे लोग कि हाँ कर्जा है, तो आप कहते थे जैसे चाहो इसको दफन कर दो, आप उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे ना। अगर हैसियत हो तो फिर अलग बीवी को घर लेकर देना चाहिए। यानी माँ बाप जैसे अपने बच्चों की जब शादी करते हैं लड़कों की, तो अगर वो अच्छे हैं, साहिब हैसियत हैं, तो बच्चों को अलग करते जाना चाहिए। अगर वो साहिब हैसियत नहीं है और जरूरत है कि अब जब फल खाने का वक्त है तो वो अपने माँ बाप की और उसकी औलाद की जिम्मेदारियों में बच्चे शेयर करें, तो फिर उनको शेयर करना चाहिए। क्योंकि अभी आपने हदीस सुनी ना कि लड़का और लड़के का माल दोनों उसके बाप के हैं, तो ये नहीं हो सकता कि लड़का कहे कि ये मेरा है, अब मैं आपसे अलग हो जाता हूँ। तो अगर हर बेटा यूं ही अलग हो जाए तो बूढ़े माँ बाप को अगर जरूरत है तो कैसे करेंगे ना। जी, आपका सवाल। नहीं, अगर माँ बाप अच्छे से रह सकते हैं, मतलब जवान हैं, कोई मुश्किल नहीं, तो कोई बात नहीं, अलग से रह लें। और अगर वो बूढ़े हैं, बीमार हैं, जरूरत है, तो फिर औलाद को अलग नहीं होना चाहिए। मतलब असल में हर एक के लिए नेकी का तरीका या मायार क्या है और असल नेकी क्या है, हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है। अगर माँ बाप जवान हैं और खाते पीते हैं और बच्चे को अलग कर दें तो कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है, कर देना चाहिए। बाज़ औक़ात माँ बाप साहिब हैसियत होने के बाद भी अपने लड़कों को अलग नहीं करते और घरों में मसाइल होते हैं, जब कर सकते हैं तो कर देना चाहिए। अगर उनको मुश्किल है, कुछ हालात ऐसे हैं कि अभी जरूरत है कि इकट्ठे मिलकर रहें, कुछ सेविंग हो जाए, या बच्चियों की शादी करनी है कि फिर मिलकर भी रह सकते हैं, तो आपस में दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो हम दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता करे। سبحان الله وبحمده وعدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العزة ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے ہم سب کے والدین کی مغفرت کر دیجئے ہم میں سے ان کے والدین جو دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیجئے اور ان سے دنیا کی زندگی میں بھول چوک کر جو بھی غلطیاں ہوئیں یا جان بوجھ کر ہوئیں یا رب العزت ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیجئے اور ہم سب کی ہر ایک کی نیک اور جائز خواہش کو قبول کر لیجئے امت مسلمہ کو متحد کر دیجئے اور امت مسلمہ کو پریشانیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر چلائیے اور ہم آپ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں دوبارہ سے ان کو اسلام اور قرآن سے محبت دے دیجئے اور اپنے والدین کی خدمت میں ہم سے جو بھی کمی بیشی ہو گئی آپ اس کو معاف کر دیجئے اور ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں یا رب العزت تو اولاد کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے یا رب العزت ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو بوجھ نہ سمجھے یا اولڈ ہاؤسز میں ڈالنے کی بات یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ذریعے جنت کما لیں ہم ان کو راضی کر لیں ہم ان کو خوش کر لیں اور جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری خدمت کی ہمیں پالا پوسا اب ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ان کو خوش کریں اور ہم ان کو راضی کریں या रब्बुल इज्जत, जितने भी मुसलमान है सबके गुनाहों को माफ कर दीजिए। वो तमाम बहनें जो ऑनलाइन दर्स को सुन रही हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, और वो तमाम बहनें जो आज यहाँ पे दर्स में मौजूद हैं, हम सबके लिए दुआ करते हैं कि हर एक की नेक और जायज ख्वाहिश को कबूल कर ले। जो बीमार है उनको शिफा अता कर, जिस्मानी शिफा भी और रूहानी शिफा भी। या रब्बुल इज्जत, जो लोग औलाद चाहते हैं उनको नेक और सहले औलाद अता कर। ए जिक्रिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद देने वाले रब, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद देने वाले रब, जो बे औलाद है उनको औलाद की नेमत से नवाज। जो बेटे चाहते हैं उनको बेटे अता कर, जो बेटियां चाहते हैं उनको बेटियां अता कर, जो जो चाहता है उनको दे और नेक और सहले औलाद अता कर। और जिनको औलाद की नेमत से नवाजा है या रब्बुल इज्जत, उनकी औलाद को उनके लिए आजमाइश ना बना। या रब्बुल इज्जत, हमें अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करने वाला बना जो उम्मे सुलेम ने हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु की। या रब्बुल इज्जत, तू हमारी औलादों को मुत्तकियों का इमाम बना। या रब्बुल इज्जत, हमें वो तरीके सिखा दे, वो दुआएं सिखा दे, वो हुनर सिखा दे कि हम अपने बच्चों को सिराते मुस्तकीम की तरफ पकड़ पर चला लें। ऐ दिलों को मोड़ने वाले, ऐ सिराते मुस्तकीम पर चलाने वाले, ऐ लोगों को नेकियों का रास्ता बताने वाले और लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, तू हमारी दुआओं को कबूल कर ले और हमें और हमारे बच्चों को और हमारे रिश्तेदारों को सबको सिराते मुस्तकीम पर चला। और या रब्बुल इज्जत, जो यतीम है उनका वाली और सरपरस्त बन जा। जो बेवा है उनकी मुश्किलात को दूर कर। वो मुसलमान जो बगैर जॉब के हैं और परेशान है मुआश के हाथों, या रब्बुल इज्जत, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन जा रहे थे और परेशान थे और रब्बे इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, वो फकीर थे, वो जरूरतमंद थे, तूने उन पर खैर नाजिल की थी, तो तू जो जॉब के बगैर हैं उनको अच्छी जॉब दे, खुला रिस्क दे, और उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी बादशाही में फकीरी करने की तौफीक अता कर। या रब्बुल इज्जत, हम आपसे ये दुआ भी करते हैं, जो कर्जों के बोझ तले दबे हैं उनको कर्जों के बोझ से निकाल। हमें हराम से बचा, हमें हलाल की तौफीक अता कर, हमें आपस में मोहब्बतें बखेरने वाला बना। और या अल्लाह, जो हमने मांगा वो भी दे दे, और जो ना मांग सके और हमारे हक में बेहतर है वो भी दे दे। रब्बना तकबल मिन्ना إنك أنت السميع الدعاء، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين.